احکام تجارت احکام تجارت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے آپ کے سوالات آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرنے ہیں لیکن ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہمارے پاکستان کے لیے بالخصوص اور مسلمانوں کے لیے بالعموم ہوا کہ ہمارے ملک پاکستان کے شہر مری میں حادثہ ہوا الحمدللہ امیر اہل سنت نے تعزیت بھی فرمائی دعا بھی فرمائی ایف جی آر ایف کی ٹیمیں بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں مری میں پھنسے ہوئے لوگوں کو پریشان حال لوگوں کو جو بھی خدمات ایف جی آر ایف فراہم کر سکتی ہے چاہے وہ کھانے پینے کی سہولت ہو چاہے گرم کپڑے ہوں یا اس کے علاوہ جو ممکنہ صورت ہو تو اس کے لیے ایف جی آر ایف کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی طرف میں اسی سوال کے ساتھ یا اس گزارش کے ساتھ بڑھوں کہ مری میں جو حادثہ ہوا عاشقان رسول مسلمانوں کی جانے بھی گئیں اس میں حادثاتی طور پر مفتی صاحب اس کے حوالے سے مختلف کمنٹس سننے کو مل رہے ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگوں کی مختلف آ رہا ہیں کچھ غمگین بھی ہیں پریشان بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جناب تنقید بھی ہو رہی ہے اور ملے جلے جذبات ہیں آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک آفت تھی ہے اور آفت کا شکار بندہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اس میں انسانی غلطی ہو نہ ہو قطع نظر اس کے بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مرتبہ انہی ایریاز میں گاڑی کھائی میں گر جاتی ہے
جی
اور کھائی میں گرنے کا سبب بھی بعض اوقات تیز رفتاری ہوتی ہے بعض اوقات وہاں کے جو روڈ ہیں ان کا نہ سمجھنا ہوتا ہے تو ملا جلا یعنی سب چیزوں کو ملا جلا کے آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ایک آفت تھی اور وہ جو سونو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے
جی
زیادہ تر اس کا ہاتھ سامنے آ رہا ہے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے یو کے سے جو ہے وہ کسی زمانے میں 2004 یا 2005 میں ماسٹر کیا تھا انجینئرنگ میں
جی
اور انہوں نے جو تھیسس لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا ان کا تھیسس جاپان سے شائع ہوا تھا کہ گاڑی جب رکتی ہے اس وقت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتی ہے جب چل رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ نکالتی ہے
ٹھیک ہے
گاڑی سے نکلنے والے جو گیسیں ہوتی ہیں
جی
اس پر ان کی جو نا مہارت ہے
ٹھیک ہے
اور وہ آئیلینڈ گیس فیلڈ میں ہی کسی ملک میں کام کرتے ہیں تو کل میں نے ان سے بھی رائے معلوم کی کہ اس طریقے سے گیس کا نام آ رہا ہے تو انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کا کافی حد تک جو نا تعلق ہو سکتا ہے
ٹھیک
کیونکہ ہم نے جو تصاویر دیکھی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جناب کئی کئی فٹ تک برف پڑ گئی ہے
جی
تو گاڑی کا جو سلنسر ہوتا ہے وہ بھی برف میں دب گیا ہے انجن اسٹارٹ ہے
جی
تو اس واقعے نے ایک اویئرنیس بھی دی ہے جس طریقے سے کرونا آنے کے بعد بہت ساری چیزوں میں اویئرنیس سامنے آئی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو پھر شیشہ بند نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ٹھنڈے علاقوں میں آپ جا رہے ہیں تو آپ ہیٹر کے بھروسے پر کبھی بھی نہ جائیں
کپڑوں کے بھروسے
ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یہ ہم گئے ایک مرتبہ سردیوں میں 2-4 سال پہلے کی بات ہے اور ایک جگہ آپ جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں
جی
اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جگہ بک کر لی اس نے کہا کہ جی میں ہیٹر ویٹر بھی دوں گا سب چیزیں دوں گا جب ہم پہنچے تو وہ جو سلینڈر ہوتا ہے نا
جی
جو عام طور پر گیس بتی کے لیے چلتا ہے
جی جی جی
یہ سلینڈر اس نے دھلا کے رکھ دیے اور سردی اتنی کہ میں جتنی بھی سویٹر اور جرابے تھی سارے پہنی تھی میں نے اور اس نے ایک مہربانی کی کہ 5-5 رضائیاں پھر بندہ دے دی لا کر ٹھیک ہے
جی
5 رضائیاں میں پانی لگ رہی تھی
یا اللہ
ٹھیک ہے -4-5 کی سردی تھی تو اگر آپ ٹھنڈے علاقوں میں جا رہے ہیں تو آپ اتنا بندوبست کر کے جائیں अच्छा, बंदोबस्त करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। आजकल ऐसे इनर्स आ गए हैं कि जो माइनस के होते हैं, चिड़िया बाजार वगैरह में आप जाएं लौंडे में मिल जाते हैं। तो ऐसे लिबास होते हैं जो ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो वो जो लिबास हैं वो आप पहनेंगे तो सर्दी नहीं लगती। अच्छे से तरीके से कोट है, कोट में जब हमने तुर्की का सफ़र किया तो हमारा तजुर्बा ये हुआ कि हमारे कोट फेल हो गए। जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा जो ना, 3 3 किलो के, 4 4 किलो का एक एक कोट था और दो दो लेकर गए कि सफ़र में ज़हर बात तो कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ये तो फेल हो गए। हम बाहर निकले, बारिश,
या अल्लाह, ठीक
यानी 12 दिन बारिश होती रही मुसलसल।
है। और वो कपड़े के कोट, बहरहाल
वो
कपड़े के
कोट
ऊन के,
थे तो वो गर्म,
जी
अब गीले होने के बाद वो तो उल्टा जो ना, वो बजाय दवाई के तो हथियार बन जाए। तो फिर हमने देखा कि कुछ लोगों के जो कोट हैं वो दूसरे वाले हैं, जिसमें वो लगा हुआ है
पैराशूट वगैरह
पैराशूट वगैरह
इस
लगा
किस्म
हुआ है।
के इनके गीले ना हो।
हमारे एक साथी थे, वो तो कर्गिस्तान से होकर आ रहे थे और वहां से इसी अंदाज का कोट ला रहे थे। तो कोट में भी तजुर्बा ये हुआ कि इस तरह का कोट हो कि बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो वो गीला ना हो।
ठीक है,
तजुर्बा से बंदा सीखता है। तो सर्द इलाकों में आप जाते हैं तो आप ये सोचकर जाएं कि वहाँ हीटर नहीं मिला तो भी मैं गुजारा कर सकता हूँ, उस अंदाज का जो है आप तैयारी के साथ जाएं। फिर अवेयरनेस की भी कमी थी, पता नहीं था लोगों को कि यूँ अगर हीटर चलाएंगे और ये सिचुएशन हो जाएगी तो यूँ हो सकता है। एक और बड़ी अहम चीज़ ये होती है कि गाड़ी चलाना, यानी जिन एरियाज में बर्फ़ पड़ती है मुस्तकिल, तो वो लोग नमक रखते हैं। यानी किसी के बंगले के बाहर गाड़ी खड़ी है तो वो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई होगी, कई
जी
कई फीट बर्फ होगा। जैसे कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वो जो बड़े मशहूर नागरा फॉल उसकी जो वो है चश्मा है,
अच्छा,
आबशार है, वो भी जम जाती है, इतनी बर्फ पड़ती है। तो लोग घरों से निकले, गाड़ी बर्फ में जमी हुई है जनाब, तो नमक डालते हैं उसके ऊपर। नमक डालने से जो है वो गाड़ी, अब गाड़ी को कैसे बेलचा चलाएंगे, तो
जी
नमक डाल के। तो अगर आप बर्फ में निकल रहे हैं तो बर्फ में क्या टूल्स होते हैं, बाद अवकात खबरों में आता है और हम देखते भी हैं कि जंजीरें बांधते हैं टायरों पर। वैसे तो बर्फ में चलने वाले टायर ही अलग होते हैं। तो अब जनाब आप जो ना वो मीरान उठा कर ले गए, या आम सी गाड़ी उठा कर ले गए, या ऐसी गाड़ी जो है तो लग्जरी टाइप, लेकिन फोर व्हील नहीं है। फोर व्हील गाड़ियाँ ऐसे इलाकों में कामयाब होती हैं। तो यूं कुछ जो है वो अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों की भी कमजोरी है। लोग जो है वो देख नहीं रहे होते कि सूरत हाल क्या चल रही है और हमें किस अंदाज पर जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जहाँ खतर होते हैं, यानी रिस्क ज़्यादा होता है, उस जगह से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है हर जगह जनाब, रिस्क कम से कम है। हमारे यहाँ निज़ाम अबतर है, ट्रैफिक में फंस जाएं हम तो पुलिस वाला नहीं आता, तो खड़े रहें जनाब, अपनी मदद आपके तरफ बंदा आगे बढ़ता है। तो यूँ रिस्क फैक्टर को सामने रखते हुए अपने फैसले करने चाहिए। और जो इंतकाल कर गए लोग, अल्लाह ताला उनकी मकसद फरमाए, उन पर अपने जवार रहमत नाजिल फरमाए और जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और जाहिर बात है एक मजलूम है बेचारे,
जी ठीक
ऐसा थोड़ी है कि वो कोई हराम मौत मरे, माजल्ला मजलूम है बेचारे, एक गए थे किसी जगह पर और मौत ने आ घेरा उनको।
ठीक है, वो तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके गए थे जैसा
मतलब
तैसा।
वो तो कोई ऐसा तो नहीं था कि वो बुरी नीयत से गए थे,
जी ठीक
शराब नोशी की महफिल से जाने गए थे, ऐसा तो हम उनके बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, गए थे, सफर करना एक जायज़ काम है, इस तरह के जो नज़ारे देखना ये भी एक जायज़ काम है, लेकिन आफत ने उन्हें मौत आ घेरा, तो एक नागहानी मौत और एक आफत का शिकार मौत है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए।
जजाकल्ला। मुझसे सूद के हवाले से एक सवाल पेश करना था आपको कि सूद के हवाले से, जाहिर सी बात है दीन इस्लाम, आप यहाँ पे इस फोरम से भी कई बार मजम्मत करते हैं कि जी सूद जायज़ नहीं है, और बल्कि इसके मुआविनीन की भी मजम्मत करते हैं आप। एक इश्काल कह लें या सवाल कह लें, वो ये कि जब कोई चीज़ हम उधार लेते हैं, किसी से कोई चीज़ उधार ली है, अवेल की है, तो हम उसका मुआवजा देते हैं। कब लेता हूँ रेंट पर, इस्तेमाल करने के लिए ले रहा हूँ, तो अब ये कब मैंने इस्तेमाल किया है और इसका रेंट दिया है, तो वो जो रकम है वो भी इसी तरीके की सूरत हाल नहीं है कि वो भी रकम ली है, इस्तेमाल की है, और अब जब वापस करनी है तो उसका रेंट देना है, तो क्या सूद में ये सूरत नहीं पाई जाती है? दोनों अलग हैं, एक ही हैं, कैसे है?
देखिए, बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं सूद के हवाले से। जो लोग दुनियावी तालीम पढ़ते हैं तो उनको बतौर नज़रिए के पढ़ाया जाता है कि सूद अगर इख्तियार नहीं किया जाएगा तो जो मनी की प्राइस है, डी वैल्यू जो इसका होना है, तो ये बढ़ती चली जाएगी, डी वैल्यू होना इसका, और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही तरह की थ्योरीज पढ़ाई जा रही है भाई। उलमा क्या कहते हैं और जो आपका सवाल है इसके मुकाबले में क्या जवाब है, कभी आप वो भी तो डिस्कस करें। सीए करने वाले, फाइनेंस पढ़ने वाले, अकाउंटिंग पढ़ने वाले, उनके लिए दावत फिक्र है। आपने तो इत्तफाकी सवाल किया, आपको शायद मालूम भी ना हो, इस्लामिक फाइनेंस कोर्स जो हमने कर रखा है, मेरा सूद पर लेक्चर था, तो एक सीए करने वाला बच्चा था, उसने सवाल किया ये। तो मैंने उससे कहा कि देखें, जो रुपया है वो डी वैल्यू हो जाता है, उसकी मालियत में कमी आती है, इससे तो हमें इनकार नहीं है।
जी
हम आपसे ये कहते हैं कि भाई आप रुपया क्यों देते हैं, आप ट्रेड क्यों नहीं करते? तिजारत करके भी तो रुपया बढ़ाया जाता है ना।
जी
तो रास्ते दो हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि जी रुपया एक ऐसा आइटम बन जाए जो किराए पर चला जाए, दुनिया
जी
में आज तक तो कोई नहीं करता। अगर थ्योरी है तो बताएं ऐसा कहाँ होता है कि किराए पर लिया जाता हो पैसा, सूद पर लिया जाता है। तो फिकहे इस्लामी में तकसीम कारी है, एक तरफ गुड्स है, दूसरी तरफ करेंसी है।
ठीक
करेंसी होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसमें से एक ये भी है कि वो चीज़ किराए पर नहीं चल सकती। करेंसी का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है ये, करेंसी को किराए पर नहीं चलाया जा सकता। जो गुड्स हैं वो किराए पर चलाने के लिए होते हैं, गुड्स के अपने मकासद होते हैं, करेंसी के अपने मकासद होते हैं। अच्छा, अब इस थ्योरी में क्या फ़र्क पड़ेगा? एक आदमी पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है, सूद दिए जा रहा है, भाई
जी
कांकर चोंगे ये
किसी इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ
कैसे
कारोबार
बढ़ेंगे?
करेगा।
बात तो वही आ गई जो हम आपको पहले स्टेप पे लेकर जा रहे थे, यानी एक साइल को हम जो पहले स्टेप पे लेकर जा रहे हैं, जब आपने लगाने तजारत पर हैं तो फिर आप तजारत की बुनियाद पर पैसा लें। बिजनेस,
एट द एंड वो बिजनेस में यूज होने।
आप जब ये कहते हैं बिजनेस में यूज होने हैं, देखिए दो चीजें होती हैं। बाज अवकात क्या होता है, इसने भी उठा के सूद पे दे दिए, उसने भी उठा के सूद पे दे दिए, एक ऐसी सप्लाई चेन बनी जो खोखली है,
ठीक है,
जिसमें इजाफा कैसे होगा?
इसमें तो इजाफा नहीं है।
अगर आज हम चाइना की तरक्की की बात करते हैं तो तिजारत उसकी तरक्की का बाइस है,
ठीक है
यानी वो इतना माल बनाता है कि दुनिया भर में जाके बिकता है, उससे उसको पैसे आते हैं।
जी,
तो जब आप, यानी जदीद जो मईशत है वो इस बात की से इनकार नहीं कर रही कि असल जो मईशत की तरक्की है वो तिजारत से होती है, तो भाई आप पैसे को सूद पर लगाने के बजाय तिजारत के मोड़ पर लगाएं। जब तिजारत के मोड़ पर वो आएगा पहले दिन से ही, तो एक हलाल रास्ते पर सफर शुरू होगा, और इसी के मुताबिक सारे जो है ना, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जो ट्रेडिंग मूड हैं, जो ट्रेडिंग के तरीक़ेकार हैं, वो उसी के मुताबिक होने चाहिए।
ठीक। कॉल की तरफ बढ़ते हैं, पहली कॉल आपकी शामिल करते हैं। जी
जी सर, वो मेरा ये मसला है, मैं भैंसे लेता हूँ सर 1 लाख की, और 1 साल चरा चरा पिला कर 2 लाख की वापसी उसी मालिक को देता हूँ, ये जायज है या ना जायज है, थोड़ा ये श्री कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी।
सही, जो तरीकाकार आपका है ये तरीकाकार तो मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है, बल्कि उसकी वजह यह है कि इस तरीकाकार के अंदर वो 2 लाख की नहीं हुई तो फिर क्या होगा, वो मर गई तो फिर क्या होगा, व्यापार के अंदर भाव कम ज्यादा भी हो जाता है,
जी
ठीक है। तो आपने भैंस ली है मजदूरी पर, तो मजदूरी पर जो जानवर लिया जाए उसके लिए जरूरी है कि मजदूरी मुतय्यन हो, आपकी मजदूरी मुतय्यन नहीं है, इतनी कार ठीक नहीं है। इसके बजाय ये होना चाहिए, जो भैंस 1 लाख की आ रही है, 50,000 रुपये भैंस खरीदने वाला आपको कर्जा दे दे, भैंस खरीदने वाला और आप दोनों मिलके आपने 1 लाख की भैंस खरीदी, अब आपकी दोनों की है, अब ये जितने की भी जाएगी आप दोनों इसके मालिक हैं, नफा दोनों में तकसीम होगा। अच्छा, इस काम में होता भी ये है मेरे भाई कि
जी
ये जो साहब हैं, इस फील्ड के लोगों को गवाला कहते हैं,
ठीक है,
इन्वेस्टर अगर भैंस खरीदेगा ना तो गवाला साथ जाएगा,
सही
गवाला साथ जाएगा मंडी में, यानी पहले दिन से वो शामिल है।
सही
जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कर्ज दे दिया जाए, ये पॉसिबल है,
ठीक है
ऐसा नहीं कि भैंस खरीद के उसको भेजी जाती है, या तो इसको बोल देंगे या वो उसके साथ जाएगा, उसको
ठीक
रेट का पता होगा,
ठीक है
अखराजात वगैरह हटा के फिर जो नफा होगा उसको ये तकसीम करते हैं लोग। जो तरीका मैंने अर्ज किया, इस पर अमल किया जा सकता है।
ठीक है। उसमें इसी तरीके से एक मामला ये भी होता है बाजू का, कारोबार तो बकायदा नहीं है लेकिन किसी को रकम की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरीके के मामलात मार्केट में मैंने सुनने में आए कि जनाब एक चीज़ खरीदवाई और खरीदवाई इस बिहाफ पे कि मैं तुमसे इतने की ले लूँगा। यानी मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन है, अब ये मैंने किसी से खरीदा 1 लाख का और फिर मैं उसको 2 लाख का दे दूंगा, ये खरीदा ही इसलिए है कि मैं 1 लाख का लेकर और 2 लाख का उसे दूंगा, तो इस तरीके से जो 1 लाख रुपए चाहिए थे मेरे पास वो आ जाएंगे। तो क्या इस तरीके की खरीदो फरोख्त को हम तिजारत का नाम देंगे या नहीं देंगे?
बड़ा अहम सवाल है। तिजारत होगी बिल्कुल, तिजारत ना होने में क्या इशू है, तिजारत है ये बिल्कुल खालिसतन। 4 से 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं शरीयत मुतारा जो हमें दी हैं, हस्बे ज़रूरत हम उसको इख्तियार करते हैं। जैसे एक बंदा, उसके पास माल ही नहीं है
जी
तो वो इस्तिस्ना करेगा, बास औरतों में माल ना होने वाला सलम करेगा। ये जो आपने नाम लिया है इसका नाम है मुराबहा,
ठीक है
चैप्टर्स पूरे पूरे किताब में मौजूद हैं। तो जो मुराबहा का अकद होता है, अकद मुराबहा के अंदर अपनी कीमत बताकर चीज़ बेची जाती है कि भाई ये मुझे इतने की पड़ी है, मैं आपको इतने की दे रहा हूँ, और वो सामने वाला बाज़ूकात दूसरे की डिमांड पर ख़रीदता है। वो कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं, आपके पास पैसे हैं, मुझे चीज़ खरीद कर दे दो नफ़ा रख कर अपना।
ठीक है
तो वो अपना नफ़ा रख के उसको बेचता है, ये तजारत है। बहुत अच्छा है, ये सूद का बेहतरीन मुतबादिल है ये।
ठीक। अगली कॉल दीजिए।
मोहम्मद हमजा अतारी, और मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि यूट्यूब चैनल पे अपने जो सब्सक्राइबर है उनको बेच सकते हैं, या यूट्यूब चैनल को बेच सकते हैं या नहीं?
अभी भैंसों का जिक्र हो रहा था और साहिवाल से काला भी, तो साहिवाल की भैंसें पाकिस्तान की सबसे अच्छी भैंस समझी जाती हैं। लेकिन खैर, ये सवाल तो यूट्यूब का है।
मुतादाद फील्ड
हाँ, अब तो जो है वो नौजवान जो हैं वो IT सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं,
जी
डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। देखें, सवाल बड़ा मार्का तुला रहा है, और अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है क्या मैं उसको बेच सकता हूँ, तो मेरा जवाब होगा कि यस, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो काम का सॉफ्टवेयर हो कि जिसको ख़रीदा और बेचा जाता है हमारे ज़माने के अंदर। तो दावत इस्लामी है जो पैसे नहीं लेती, जनाब प्रे एप्लीकेशन बना दी, सातों जनान की एप्लीकेशन बना दी, जिसमें आप तफसीर पढ़ते हैं, किताबों की एप्लीकेशन बना दी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वरना जिसकी ये ज़रूरत हो और पैसों की मिले तो बताए, उसको तो पैसे को खरीदनी पड़ेगी। और आज भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो पैसों के खरीदने पड़ते हैं। तो अगर मैं ये सवाल, आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो बताएं क्या मैं इसको बेच सकता हूं, तो मेरा जवाब होता है यस, आप बेच सकते हैं। ठीक है, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। आप कहते हैं जी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें बड़ी मेहनत की है। अब ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इस डिजिटल प्रोडक्ट के मामले के अंदर देखा जाएगा कि आपके उस चैनल का कंटेंट क्या है। पता चला कि आपने जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए पता नहीं जो मिला, यहाँ का रोड़ा और यहाँ की ईंट सब जनाब मिला के कोई बना दिया है, जायज़ नाजायज़ का कोई फ़र्क ही नहीं है। तो जब एक चीज़ अपने कंटेंट की बुनियाद पर बेचा जा रहा है, क्योंकि अब जो यूट्यूब कंटेंट है उसके एक राइट्स हैं, आप किसी की वीडियो को कहीं और जो है वो नहीं चला सकते, स्ट्राइक आ जाती है। तो जब कॉपीराइट आपको हासिल हुए हैं तो उसकी अहमियत है ना कंटेंट की, तो कंटेंट का जायज़ होना शर्त है। कंटेंट ऐसा हो उसके मनाजिर, उसके जुमले, उसके अल्फाज गैर शरी उनवानात पर मुश्तमिल ना हो, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट है, अब एक जायज़ प्रोडक्ट बन गई है, शरी खराबियों से पाक है। तो शरी खराबियों से पाक कोई प्रोडक्ट है, और डिजिटल प्रोडक्ट है, और ऐसे प्रोडक्ट है कि जो हमारी ज़रूरत भी है। ठीक है, आप कहेंगे क्रिप्टो, मैं कहूँगा क्या ज़रूरत है भाई हमारी, बताओ तो सही, उसे कौन सी चीज़ खरीदी जाएगी? एक बिटकॉइन के अंदर जो है आप खरीदने जाएंगे, वो 70-80 लाख रुपए का आपको मिलेगा। क्या मिला आपको? एक कोड मिला,
जी एक डिजिटल कोड है
कोड मिला। अभी 70-80 लाख रुपए की फैक्ट्री लगाएं आप, ठीक है, सैकड़ों मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगी, आप एक्सपोर्ट करेंगे, GDP बढ़ेगी, मुल्क को फ़ायदा होगा, डॉलर आएंगे, पूरी रोलिंग उसकी पैदा होगी। और 70-80 लाख रुपए उठा के आपने कोड में डाल दिए तो वो तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। तो ये जो है ना, इस तरह के जो कंटेंट हैं बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूँ एक प्रोडक्ट तो है डिजिटल प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम खरीदते और बेचते हैं। जैसे आप वेबसाइट अगर आपकी है, आपने सर्वर खरीदा हुआ है, जो कंपनियां होती हैं वो अपने नाम से ईमेल जो है ना वो IP खरीदती हैं। तो डिजिटल होने का मतलब ये नहीं है कि वो नाजायज हो जाएगी, डिजिटल होने का सिनेरियो देखा जाएगा। हम देखेंगे कोई सट्टा तो नहीं है, कोई धोखेबाजी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। अभी क्रिप्टो पे आया है फ्रॉड, क्रिप्टो के नाम पर आया है, क्रिप्टो का फ्रॉड तो नहीं है, खैर वो क्रिप्टो के नाम पर हुआ है कि जी कुछ 17-18 अरब रुपए की कहानी चल रही है कि उसका फ्रॉड हुआ है।
जी
ये जो प्रोडक्ट आपकी दीगर से मुमताज़ है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर कोई बेचता है इन शराइत पर जो मैंने बयान की है, तो उसमें कोई आज नहीं होगा।
ठीक, अगली कॉल दीजिए। जी
पिछले एक सिलसिले में आपसे एक सवाल किया था आपने, माशाल्लाह जवाब अता फरमाया, तो हमने उसका एक क्लिप, वीडियो क्लिप बनाकर अपनी जो मार्केट है उसके ग्रुप में शेयर किया, तो कुछ उस पर इतराजात और कुछ जवाब भी उस पर आया। तो वो सवाल ये था कि जो जो सिलाई का काम करते हैं गोल्ड की मार्केट में, तो उसमें जो सिलाई करने वाला कारीगर होता है उसको उसी में से उजरत दी जाती है कि आप इसमें से अपनी उजरत भी काट लीजिएगा और बाकी जो बचे सोना हमें दे दीजिएगा, तो ऐसा ही उर्फ चल रहा है। उस पे बाद लोगों ने ये इतराज किया कि जब देने वाला, काम कराने वाला और काम करने वाला दोनों राजी हैं कि हम ठीक हैं, तो फिर मुफ्ती साहब ने ऐसा क्यों कहा कि ये दुरुस्त नहीं है? और दूसरा, क्या अगर दोनों राजी हों तो क्या फिर ऐसा हो सकता है? और अगर इसका दुरुस्त तरीका क्या होना चाहिए, अगर सोने ही की शक्ल में वो कारीगर भी और वो देने वाला भी उजरा देना चाहे तो क्या तरीकाकार हो सकता है?
देखें, पहली बात तो ये है कि हर जगह रजामंदी नहीं चलती। हम शरीयत के उसूलों के पाबंद हैं, शरीयत के जो उसूल हैं उनको सामने रख के हम, यानी एक आलिम दीन या मुफ्ती को जायज़ और नाजायज़ बताना होता है। एक ये मसला कहलाता है कफीज़ तहान का, और तहान चक्की को कहते हैं। तो चक्की का आटा, यानी एक हदीसे पाक है जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि कोई शख्स आटा पिसवाए और उस आटे में से ही उजरत दे। तो ऐसी कोई भी डील, सैकड़ों डील्स फैली हुई हैं मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पर जो है वो आटे की मिसाल आप ले लें, आप जो आपकी मिसाल थी वो भी यही था कि जो आपने काम दिया उसी में से उसको उजरत करार दी गई है। उजरत अलग से मुकर्रर करना ज़रूरी है, हदीसे पाक में मना फरमाया गया है ऐसे तरीके से कि जो आपने काम दिया है उसमें से ही आप उजरत निकालें। ये कफीज़ तहान कहलाता है, चूँकि हमें पता नहीं है हदीस किस किस चीज़ के बारे में आई है। पूरा एक चैप्टर होता है हदीस की किताबों में कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इन खरीदारियों से या इन तरीक़ेकार से मना फरमाया है। तो हमारी नॉलेज की कमी होती है। सोने में अगर आपको रखना है तो सोने में रखने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप मुकर्रर कर लें कि भाई इस काम के बदले इतने रत्ती सोना आपको मिलेगा, अलग से मुकर्रर कर लें, वो एक अलग से आप देंगे। ये नहीं कि जी इसकी जो भी छलाई होगी उसमें से जाएगा, ऐसा ना करें। ये करना जो हदीस पाक में मानत है उसमें दाखिल हो जाएगा।
अगला सवाल दीजिए।
जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी मिलती है, पैसा मिलता है, तो इसको भी बाद लोग नाजायज कहते हैं, तो इस मामले में रहनुमाई से आप फरमा दीजिए।
देखिए, हर शख्स अपने पैसे का हिसाब रखता है, तो उस हिसाब में ये देखना चाहिए ये पैसा किस खाते में मिल रहा है। होता ये है कि आपकी सैलरी से पैसे कटते हैं। प्राइवेट कंपनियों में ये रूल होता है कि जितने पैसे सैलरी से कटेंगे उतने ही पैसे आपकी कंपनी भी डालेगी। ये पैसे दोनों आपके ही होंगे, वो जो आपकी कंपनी डाला वो आपके ही हो गए, एक तरह से सैलरी का हिस्सा है वो। और ये पैसे फिर इदारों में इन्वेस्ट होते हैं, फाइनेंस के इदारों में। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सूदी मोड पर होती है, जो सूदी सिस्टम उस पर होती है। आपके पैसे मिसाल के तौर पर 2 लाख कटे और 20 साल के बाद वो आपको 10 लाख होकर मिले, तो 8 लाख जो आपको मिला है, जो इजाफा हुआ है, वो सूद कीमत में इजाफा हुआ है। तो जो मना किया जाता है वो इस बुनियाद पर मना किया जाता है कि वो सूद की रकम है, लेकिन जो आपकी अपनी रकम थी वो कंपनी ने हिस्सा मिलाया या आपकी अपनी सैलरी से कटा। जैसे जो सरकारी इदारे हैं उनमें सिर्फ मुलाजिम की सैलरी से कटौती होती है, इदारे नहीं मिलाते। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर सिर्फ एक तरफा कटौती होती है, प्राइवेट सेक्टर में दो तरफ से इजाफा होता है। तो जो असल रकम है वो आप ले सकते हैं, वो आपकी हलाल है, लेकिन जो पुरानी रकम है वापस करने का तरीकाकार तो नहीं होता। अलबत्ता ये होता है कि आप टिक लगवा सकते हैं कि जी जो सूद है वो मैं लेना नहीं चाहता, तो फिर आपकी जो रकम है वो उसमें इजाफा होता ही नहीं है, आप अपनी असल रकम ही वापस ले लेते हैं। तो अगर किसी की जमा हो भी गई है तो वसूल तो करेगा, वो वसूल करके सूद जो इजाफा हुआ है वो खर्च नहीं करेगा, वो बगैर सवाब की नीयत के सदका करेगा, सदका वाजिबा है, जो असल रकम है वो उसके हलाल है।
मौसम नईमुद्दीन शेख अशरफी हैं और कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग जायज है या ना जायज।
लफ्ज है मल्टी लेवल मार्केटिंग,
ठीक,
वो और दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग से क्या मुराद है बताएं पहले क्या है।
ठीक है,
जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है उस पर तो मेरा पूरा रिसाला मौजूद है, उसका मुताला करें, और वो जो रिसाला है उसमें पूरी तफसील के साथ बयान किया गया है कि ये क्यों ना जायज है।
ठीक है, अगली कॉल की तरफ बढ़ते चले, कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, कोई तोहफा दे तो कभी मजबूरी हो तो उस तोहफे को सेल करके अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे, शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
ये ना हो कि आप अपना बीवियां जो है ना वो चीजें बेचना शुरू कर दें जवाब के बाद, ठीक है, क्योंकि ये जो घरों का लेन देन होता है ये इसका पस मंजर ही अलग होता है। तोहफा दिया जाता है मालिक बनाने के लिए, यानी गिफ्ट जो है सबब मिल्कियत होता है, कब्जा हो जाए तो, कब्जा जब हो गया तो सामने वाला उसका मालिक बन जाता है। मालिक बनने का मतलब है वो जो चाहे करे। तो ये किसने कहा है कि जनाब वो बंदा मजबूर है बेच नहीं सकता, वो मालिक है बेच सकता है। अब जो मैंने घरों वाली बात की है, घरों में एक लंबी सीरीज है, यानी मंगनी होते ही तोहफे तहफ का लेन देन शुरू हो जाता है,
ठीक है,
मंगनी हुई जनाब लड़के वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, फिर हम देखते हैं मंगनी टूट गई तो सारे वापस कर रहे होते हैं। अगर ये गिफ्ट होता तो सामने वाला तो मालिक बन गया था वापसी की चीज़ की,
ठीक है।
तो मंगनी शादी में जो रवाज हैं वो हर बिरादरियों का अलग अलग रवाज है, मेमनों का अलग होगा, उर्दू स्पीकरों का अलग होगा, पंजाबियों का अलग होगा, बलोचियों का अलग होगा, कितने ऐसे कौमें हैं जो जहेज जो है ना लड़के से लेती हैं
जी,
लड़की जहेज लेके नहीं आती, लड़के को कहा जाता है कि तुम बनाओ जहेज। तो यूं मुख्तलिफ बिरादरियों में हमारे यहाँ मुख्तलिफ रवाज हैं। कुछ बिरादरियों में ये रवाज होता है कि तलाक हो जाए तो सब चीज़ें वापस लेनी पड़ती हैं। ये वहाँ होता है जहाँ खास सरात नहीं हुई, जैसे पहली रात को शोहर जो गिफ्ट देता है वो हमारे यहाँ गिफ्ट है, उससे मिलकर साबित हो जाएगी और वो वापसी नहीं होती। लेकिन जो ब्रेवा चढ़ावा जो मेके से जो ससुराल से तलाक वगैरह के बाद ये चीज़ें फिर वापसी होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो गिफ्ट नहीं होता। तो ये एक ब्रेक लगाने की वजह थी कि ये जो मामलात हैं ये थोड़े अलग हैं, और आम एक जिंदगी है किसी की बर्थडे हुई है और कोई गिफ्ट लेकर आ गया, नया घर बनवाया गिफ्ट लेकर आ गया, तो इसके अहकाम अलग हैं। अच्छा, इसी तरीके से शादी के मौके पर जो न्योता दिया जाता है, और भी कोई नाम है इसका न्योते के अलावा,
सलामी कहते हैं,
सलामी और चीज़ होती है,
बस
शादी पे सलामी भी होती है, सलामी तो गिफ्ट ही होती है, भाई रिश्तेदार दूल्हा को कुछ दे रहे हैं वो सलामी होती है। न्योता ये होता है कि शादी खाने आए हैं तो लिफाफा देकर जाएंगे
जी।
अब इस लिफाफे में भी दो उर्फ हैं, बहुत सारी बिरादरियों में ये काबिले वापसी होता है, बाकायदा रजिस्टर बना के रखे होते लोगों ने, हमने उनकी शादी में इतने पैसे दिए थे, ठीक है, यानी वो एक वक्ती तौर पर कर्जा दिया जाता है कि भाई हमने आपको दे दिया, हमारी कभी होगी तो आप दे देना,
ठीक है,
तो वो काबिले वापसी होता है,
ठीक,
बाज बिरादरियों में
सही,
तो बहुत सारे घरानों में काबिले वापसी नहीं समझा जाता,
ठीक,
फिर शख्सियत वाइज भी फर्क होता है। तो यूं ये है कि अब मैं गया पिछले दिनों किसी के पास, बच्चे को पैसा देने लगा, कह लगे आपने इस बच्चे के बाप के जो शादी में शिरकत की थी ना, जो लिफाफा दिया था वो आज तक हमने रखा हुआ है। मैंने कहा भाई रखने के लिए थोड़ी था वो, कुछ इस्तेमाल करें। तो यूं अपने अपने कुछ लोग होते हैं जिनका देना हो सकता है मामूल से हटकर समझा जाता हो, लेकिन दो बड़े उर्फ हैं हमारे यहाँ, बाज लोग कर्ज समझ कर ले और दे रहे होते हैं, और बाज बिरादरियों में कर्ज नहीं समझा जा रहा होता, लेकिन इसके जायज़ होने में कोई शक नहीं है,
ठीक।
हाँ, अगर कहीं कर्ज पर इजाफा मकसूद होता है तो वो एक काबिल मजम्मत पहलू आ जाएगा, अमूमी सूरत में नाजायज़ नहीं है ये, बाज लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं इसके खिलाफ, ऐसा नहीं है।
मुझसे तोहफे में आपने फरमाया मिल्कियत हासिल हो जाती है, आपने काफ़ी इसको तफसील के साथ बयान फरमाया। बाजू का यूँ भी होता है कोई तोहफा देता है और फिर वो चाहता है कि आप ही इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर मैं घड़ी पहना हूँ, अच्छा इत्तेफाक ये है तोहफा ही भाई ने दी थी, तो अब ये घड़ी दी किसी ने, लेकिन ये बाज़ औक़ात ये कैद लग जाती है कि आप ही इस्तेमाल करना, कोई और ना, अब किसी और को दे दी तो फिर इस पे अनबन हो रही होती है।
देखिए पहली बात तो ये है कि तोहफे में इस तरह की जो शर्त है वो बातिल होती है।
ठीक,
तोहफा ठीक होता है,
ठीक,
इस तरह की शर्त का जो एतबार करना है वो ज़रूरी नहीं है। तो तोहफा चूँकि सामने वाले की मिल्कियत में चला जाता है कब्जा करने के बाद,
जी,
अब वो उसका मालिक जो चाहे करे, उस पर एतराज़ बनता नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत मोहब्बतों से चाहतों से दी गई चीज़ होती है, वालदा ने दी है, करीबी अजीज़ ने दी है, बहनों ने कोई चीज़ दे दी, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमने जिस मकसद के लिए दी है यही काम करे,
मकसद
तो अच्छी बात है। अंगुश नुमाई से बचना चाहिए और दिल यानी समझे कि हौसला बढ़ाने का और दिल जोई का मामला है तो इसमें इस तरीक़ेकार पर अमल करना अच्छी बात है।
ठीक है जी। नईमुद्दीन शेख अशरफी साहब, आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से इनका मैसेज आया, तो ये रिसाला मुफ्ती अली असगर साहब का डाउनलोड
वहाँ नहीं होगा, नेट पर सर्च कर लेंगे GMI फतवा, मुफ्ती अली असगर फतवा अबाउट GMI, तो ये फतवा निकल आएगा।
ठीक है मुझसे एक सवाल है कि अगर किसी ने कंपनी से मेडिकल अलाउंस की मद में मेडिकल बिल वसूल किया है और फिर पेशेंट का इंतकाल हो गया लेकिन दवाइयां बाकी हैं, तो उन दवाइयों का क्या होगा?
देखिए जब दवाइयां खरीद ली जाती हैं
जी
तो वो तो मिल्कियत में आ जाती है ना।
ठीक है,
तो इस्तेमाल शुदा दवाइयां तो कोई भी वापस नहीं लेता।
सही,
तो दो तरीके होते हैं। बाज़ लोग तो क्या करते हैं, पूरे रिश्तेदारों का भला सोच रहे होते हैं, जाएंगे अस्पतालों में खांसी हो गई है वो हो भले ना, इतनी सारी दवाइयाँ ले आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, ये तो ज़ाहिर बात है गलत तरीका है, धोखादेही है। लेकिन रियल पेशेंट हो, बाद का दो खुराक लेने के बाद दवा की हाजत नहीं होती,
ठीक,
ऐसी सिचुएशन होती है, इसका मतलब ये नहीं कि दवाई वापस कर कराएं जनाब। तो जो दवाएं एक मरतबा आ गई हैं वो तो उर्फन ये होता है कि बंदा मालिक बन जाता है उसका,
ठीक,
वो वापस करना जरूरी नहीं है।
ठीक, नेक्स्ट कॉल दीजिए।
ये बोल रहा अभी गंदम की कटाई है ना, अभी 3 महीने इसको रहता है ना गंदम की कटाई को, अभी मेरे पास एक बंदा आया बोलता 10 बोरियां मैं आपको देना चाहता हूँ कि 3,000 के हिसाब से, रेट अभी निकला नहीं है गंदम का, क्या मैं उसको पैसे दे सकता हूँ अभी से?
3 महीने आपके इलाके में रहते होंगे, हमारे इलाके में तो बस आने वाली है 20-25 दिन की बात है।
शुरुआत तो वहीं से होती है।
जी हाँ, अच्छा शुरुआत वहां से होने की भी एक वजह है, कुछ अजायबात है पाकिस्तान में।
जी,
सूरज जो है ना उन इलाकों के करीब से होकर गुजरता है, बराह रास्त सूरज गुजरता है या एक पहलू से गुजरता है, ये भी एक फल्कियात की वो है, तो शायद एक वजह ये हो, इसी बिना पर वो इलाके गर्म भी हैं।
ठीक,
देखें एक डील वो होती है कि जिसमें सामने वाला आदमी पूरे पैसे लेकर आ जाता है कि मुझे ये माल चाहिए, सारे पैसे ले लो और ये माल मुझे दे दो, और जिसके पास वो आया है उसके पास वो माल नहीं होता। जैसा कि इन्होंने कहा कि गंदम तो अभी उसकी फसल जो है ना ज़मीन में, हो सकता है बीज में ही हो, 3 महीने वाले की, तो हो सकता है कुंपल भी ना फूटी हो, तो इनको जाना पड़ेगा बेसलम के तरीक़ेकार पर। अब सलम जो है ना वो एक नया नाम है, एक नया लफ्ज़ है, ये क्या होता है, इनके लिए थोड़ी सी अजीब सी बातें होंगी, लेकिन इस अजीब सी बातों में एक इश्किया पहलू में बयान कर दूं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद बेसलम फरमाई है, इस तरीके कार को फरमाया है, इसकी हमें यूं तरगीब मिलती है कि जो काम आपने किया वो हम करें, तो हमें तो सीखना चाहिए वो चीज़ क्या होती है भाई, सारे दुनिया की तजारत की मालूमात हमें हो लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने किस तरीके कार से तजारतें की वो हमें पता ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। सलम में ये होता है कि आपके पास माल नहीं है और 1 महीने या ज़्यादा की उधार हो, यानी माल की डिलीवरी 1 महीने के बाद दी जाएगी, आपके यहाँ तो 3 महीने तो अच्छी बात है, 1 महीने से कम नहीं है। पहली शर्त यह थी कि 1 महीने से के बाद की डिलीवरी हो वो आपके यहाँ पाई जा रही है। दूसरी शर्त यह है कि सारी रकम एक साथ देगा वो, बिल्फर्ज उसके पास सारी रकम नहीं है, 10 मन वाली 10 बोरी की रकम है तो 10 बोरी का सौदा कर ले वो, फिर बाद में करना चाहता है तो बाद में कर ले, शरायत पाई जाए तो। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त इसके अंदर ये होती है, अगर आप मुझसे आज ये पूछते हैं भाई आम के बाग का मैं सौदा करना चाहता हूँ तो मैं ये कहता नहीं हो सकता। तीसरी शर्त ये है कि वो चीज़ जिसको ख़रीदा और बेचा जा रहा है सौदे से लेकर डिलीवरी तक मार्केट में अवेलेबल हो, तो गंदम तो अवेलेबल है मार्केट में
जी
ठीक है, और 3 महीने बाद भी अवेलेबल होगी, लेकिन आम के बारे में अगर कोई बंदा आज डील करने लगे तो आम तो अवेलेबल ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के मार्केट में। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ 12 महीने आम होता है, और थाईलैंड का आम बड़े मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा होता है, जायका इसका वो नहीं होता जो हमारे यहाँ जायका है, हमारे यहाँ तो असल जायका है आम का। ये दूसरी शर्त थी, यानी तीसरी थी, पहली ये कि 1 महीने ज्यादा की उधार हो माल की, दूसरी ये कि पैसे एकमुश्त आपको हवाले कर दे, तीसरी शर्त ये कि माल सौदा होने से लेके जब तक के माल की सुपुर्दगी का टाइम नहीं आता मार्केट में अवेलेबल हो। चौथी शर्त वो है कि जो आम तिजारत की होती है, माल कैसा होगा, किस किस्म का होगा, कौन सी जिंस होगी, पहुंच पे माल दिया जाएगा कि उसको उठाना होगा, बारदाना किसका होगा, तोल अगर होता है तो तोल की मजदूरी किसकी होगी, ये जो सब चीज़ें हैं, जो ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हर ट्रेडिंग के अंदर समझी जाती हैं ज़रूरी, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए ये 4 बुनियादी चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं, इनको पूरा करते हुए ये खरीदारी हो सकती है।
ठीक, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा, मदनी चैनल देखते रहिए, अल्लाह ताला हमें इल्मे दीन सीखने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।